ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆல், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யுவர் அபவுட் டு லிசன் வைதிக் சாந்தி மந்த்ரா பிரசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ ஹரிஹரானந்த சாகர்ஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
ஜோ சாஸ்திர விதி கா உத்சர்ஜன் கருக்கு, உல்லங்கன் கருக்கு, காம காரத, யானி கி அப்னி இச்சா கே அனுசார், जैसे कहते ना मेरे को ये अच्छा नहीं लगता है, मेरे को ऐसे ही अच्छा लगता है, लेकिन उसमें इच्छा की प्रधानता नहीं होती, विधि की प्रधानता होती है। लेकिन विधि के अनदेखी करके यदि हम अपनी इच्छा से करेंगे, जैसा अच्छा लगे उसी प्रकार से करेंगे, तो उसको कहते हैं काम कारता। भगवान ने उनके लिए कहा कि नस सिद्धि मवाप्नोति, वो उनके फल को प्राप्त नहीं करता है। और फल हम किस लिए लिए, किसके लिए चाहते, सुख के लिए? तो जब फल ही नहीं मिलेगा तो सुख कहां से मिलेगा? और फिर यदि निष्काम भाव से वो कर्म करते हैं तो निष्काम भाव के फल स्वरूप वो ब्रह्म भाव की प्राप्ति करने में भी कर्म कारण होता है, किंतु ये कर्म काम कारत होने से पराम गति में भी न, ब्रह्म भाव की प्राप्ति भी वो नहीं करा सकता है। इसलिए धर्म और ब्रह्म ये दोनों वेद के द्वारा ही प्रतिपादित है, और जो जैसे यहां पर कहा छंद साम, तो छंद साम से अभिप्राय है वेद। देखिए यद्यपि छंद शब्द है वो वेद का एक अंग है, छंद है वो वेद का एक अंग है। आप लोगों ने सुना होगा छह अंग मिलकर के वेद बनता है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये छह अंग है और वेद अंगी है। तो ऐसे जो छंद से अभिप्राय है पूर्ण वेद, उस वेद में ये जो प्रणव है वो श्रेष्ठ है। और एक बात और भी कही कि वो विश्व रूप है, विश्व रूप है वो प्रणव, विश्व रूप, विश्व ही जिसका रूप है। ये जो विश्व है वो प्रणव का रूप है। विश्व से अभिप्राय ये जो दृश्यमान संसार, वो दृश्यमान जो संसार है वो विश्व रूप है, वो ओमकार रूप है। वो यानी कि जो ओमकार है वो सर्व जगदात्मक है, क्योंकि कल आपको बताया था ना कि प्रणव का जो प्रथम अवयव जो अकार, उस अकार के अंदर सर्व वाणी का अंतर्भाव हो जाता है। वाणी से हम जो भी वर्ण का उच्चारण करते हैं उन सब का अंतर्भाव ओंकार का जो प्रथम अवयव जो अकार है उस अकार के अंदर उनका अंतर्भाव हो जाता है सभी वाणी का। और अकारो वै सर्वा वाक, इस श्रुति से यह भी कहा गया कि अकार ही सर्व वाक है, सभी वाणी का मूल है। वो भी कल हम उनका विचार कर चुके कि सभी वाणी यानी जितने भी वर्ण है उनकी उत्पत्ति अकार से है। और जो वाणी है वाणी का जो है, वाणी के अंदर जो वाच्य है, वाच्य का अंतर्भाव हो जाता है। वाची च वाच्यानाम अंतर्भावात्। जितने भी वाच्य है, वाच्य है यहां संसार, शब्द का वाच्य है। देखिए, यदि वाणी नहीं होती तो ये संसार ही नहीं हो सकता था। हम ये जो व्यवहार कर रहे हैं वो वाणी मूलक है। वाणी नहीं होते तो कोई व्यवहार नहीं हो सकता था। इसलिए ये जो व्यवहार है वो वाणी मूलक है, और जितने भी पदार्थ है वो सब वाच्य है, और वाच्य का वाणी में अंतर्भाव है। देखिए, यदि शब्द नहीं होता तो आप अर्थ को नहीं बता सकते, और शब्द का और अर्थ का बड़ा विलक्षण संबंध है। कहीं एक लोग बैठे हुए होते, उसमें एक का नामोच्चारण करेंगे तो एक ही व्यक्ति खड़ा होगा। शब्द और अर्थ का अचिंत्य संबंध है। शब्द के अंदर ऐसी अचिंत्य शक्ति होती है जो अर्थ को अपनी ओर खींच लेती है। भगवान शंकराचार्य जी ने अपनी एक कृति में कहा है, शब्द शक्ति रचिंत्यत्वात् शब्दादेव अपरोक्ष दीहि प्रसुप्त पुरुषो यद्वत् शब्दे नेवानुबुध्यते। शब्द के अंदर बड़ी अचिंत्य विलक्षण शक्ति है। अपरोक्ष दीहि यानी अपरोक्ष शब्द से हुआ करता है। शब्दाद एव अपरोक्ष दी, अपरोक्ष ज्ञान शब्द से ही होता है, अन्य किसी प्रकार से नहीं। दृष्टांत बताया, प्रसुप्त पुरुषो यद्वत्, जैसे एक साथ में 25 व्यक्ति सोए हुए हैं, उसमें से आप एक का नामोच्चारण करेंगे तो वो जिसका नामोच्चारण किया वही व्यक्ति उठेगा और कहेगा कि हाँ भाई क्या बात है, और सब सोए हुए रह जाते हैं। वैसे आप उनके पास ढोल बजाएंगे तब भी वो नहीं उठेंगे, लेकिन नामोच्चारण करेंगे तो वो तुरंत उठ जाएंगे। वाक और उनका अर्थ हमेशा संपृक्त रहता है। कालिदास जी ने भी कहा, वागर्था अविव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये, जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। कालिदास जी ने एक रघुवंश ग्रंथ लिखा जिनका नाम है रघुवंश, उसके मंगलाचरण में उन्होंने ये कहा, वाणी और अर्थ की भांति भगवान शंकर और पार्वती दोनों संपृक्त है। इसलिए वाणी नहीं होती तो व्यवहार नहीं हो सकता था। संसार की सत्ता ही वाणी से है, इसलिए सभी वाच्य है, उस वाच्य का वाणी में अंतर्भाव है, और वाणी है वो अकारादि और हकारादि वर्ण ही वाणी है, और सभी वर्ण जैसे कि कहा कि वो अकार से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए अकार है वो ओमकार का प्रथम अवयव है, इसलिए ओमकार के प्रथम अवयव अकार में ही सारे संसार का अंतर्भाव हो गया। तो हुआ कि नहीं ओमकार विश्वरूप, बताओ। विश्वरूप होने का अर्थ ये है कि उनके द्वारा ये सारे संसार का व्यवहार चलता है। इसलिए ओमकार है वो सर्व जगदात्मक है। ऐसा जो ओमकार है यानी कि जो छंद में यानी कि वेद में ऋषभ है और जो ओमकार विश्वरूप है, स मे मेधया स्पृणोतु, ये कहा गया। देखो स माने वह जो वेद में ऋषभ है, श्रेष्ठ है और विश्वरूप है, ऐसा ओमकार मैं यानी मेरे को मेधया स्पृणोतु, मेरे को, मैं कौन? तो कहा जो मैं उपासक, और ऐसा मैं उपासक जो मैं अभी वेदांत का श्रवण करने का जो अभी अधिकारी बना हूं, वेदांत के श्रवण में अभी मैं तत्पर हो रहा हूं, और श्रुतार्थ ग्रंथ की विस्मृति मेरे को हो जाती है, इसलिए मेरी प्रज्ञा शक्ति बढ़े जिससे कि मैं वेदांत का श्रवण और श्रवण के द्वारा ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकूं। इसलिए आप हे ओमकार मेरे को आप मेधया यानी प्रज्ञा से स्पृणो तू यानी प्रीणयतु यानी कि प्रज्ञा बल आप मेरे को दीजिए। प्रज्ञा बल की इसमें प्रार्थना की गई। देखिए यदि प्रज्ञा बल चाहते हैं तो इनका जप करना चाहिए, ये प्रणव जप है। इसलिए शुरुआत में बताया ना कि प्रणव जप करने के लिए यहां पे ये मंत्र बताए जा रहे हैं। प्रज्ञा बल की प्राप्ति होती है इससे, इसका जिसकी जिसको मन में यह है कि मेरी प्रज्ञा मंद है तो प्रज्ञा मान्य दोष के कारण उनको सब विस्मरण हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को ये जप करना चाहिए तो प्रज्ञा बल बढ़ेगा। लेकिन यहां पर ये जो प्रज्ञा बल है वो लौकिक के लिए नहीं, लौकिक लाभ के लिए नहीं है। नहीं तो कहेंगे कि चलो बढ़िया इसका जप करे और बढ़िया बुद्धि हो जाए और संसार में लाभ प्राप्त करे, ऐसा नहीं है। यहां तो जो है ब्रह्म विद्या का उदय करना, ब्रह्म विद्या के उदय के लिए, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए वेदांत का हम श्रवण कर रहे हैं, तो श्रवण करते समय जो हमको ग्रंथ का अर्थ विस्मृत हो जाता है वो विस्मृत न हो जाए, इसलिए यहां पर ओमकार से ये प्रार्थना की गई है। तो वो किसके लिए? जो श्रवण का अधिकारी हो चुका है उनके लिए। और एक बात बताई जा रही है, ओमकार की विशेषता बताई जा रही है। देखो छंदोभ्योध्यमृतात् संबभूव, ये कहा गया। ये जो है ओमकार कैसे उत्पन्न हुआ है, कहते हैं छंदोभ्यः संबभूवः। ये ओमकार की जो उत्पत्ति है वो छंदोभ्यः, छंद से है। यहां पर भी छंद का अर्थ है वेद, यानी कि वेद से उत्पन्न हुआ है ओमकार। और वेद का एक विशेषण बताया गया अमृतात्। वेद कैसे है? अमृत है, अमृत है वेद। अमृत का अर्थ है नित्य, जो नहीं मरता है उनको क्या कहते हैं? नित्य कहते हैं। मृत वो है जो मर चुका है, उसके जो मर चुका है उनके लिए क्या कहेंगे, अथवा जिसका मरणशील स्वभाव है और अगर अकार लग गया तो उनका निषेध हो गया। जो कभी भी मृत कोटि का नहीं होगा, अमृत, मृत्यु जिसकी न हो उनको कहेंगे नित्य। नित्य का अर्थ है जो तीनों कालों में एक जैसा रहे उनको क्या कहते हैं, नित्य कहते हैं। चाहे भूतकाल हो, भविष्य काल हो या वर्तमान काल हो, उनको अमृत कहते हैं, नित्य कहते हैं। तो आप कहेंगे कि वेद इस तरह से नित्य है क्या? तो यहां वेद को नित्य कहने का अभिप्राय यह है कि उत्पत्ति से लेकर, संसार की उत्पत्ति से और प्रलय होगा तब तक वो रहते हैं इसी रूप में, और आनुपूर्वी से तो वो कल्प कल्पांतर से उनका अर्थ एक ही रहता है, इस दृष्टि से भी नित्य कहा है। इसलिए ऐसा जो अमृत स्वरूप जो वेद है उससे ये ओंकार की उत्पत्ति हुई है, और अमृत इसलिए भी उनको कहना चाहिए कि जो उनको पीता है वो अमर हो जाता है। और वेद को पीने का अभिप्राय क्या है, वेद को प्रमाण रूप से स्वीकार करना ही वो उनका पान है। और प्रमाण रूप से स्वीकार करने का अभिप्राय क्या है, जैसा वेद में कहा वैसा यदि हमारा जीवन हो तो ये निश्चित बात है कि हम निर्विशेष भाव को अवश्य प्राप्त करेंगे ही। मनुष्य जन्म का लक्ष्य यही है, मोक्ष प्राप्त करना। और मनुष्य का जो जीवन है वो यदि नियम में बद्ध नहीं है तो ऐसे जीवन को स्वच्छंदी जीवन कहेंगे, और जो स्वच्छंदी व्यक्ति है उनका इहलोक में और परलोक में कहीं भी कल्याण नहीं होता है। इसलिए मनुष्य जीवन को सफल करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए वेद के अंदर जो उपाय बताए हैं उस उपाय को यदि मनुष्य करता है तो वो अमर हो जाता है। अमरता को प्रदान करने वाले हैं ये वेद। सबसे पहले मनुष्य कर्म का अधिकारी है, आदौ निष्काम कर्म निष्ठा। सबसे पहले मनुष्य को यदि मोक्ष प्राप्त करना है तो कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए, शुरुआत वहीं से होती है। वैसे तो मनुष्य पहले से स्वतंत्र है, लेकिन स्वतंत्र जीवन है वो दुखदायी है, इसलिए कुछ नियम से बद्ध होना चाहिए। और नियम से बद्ध होने के लिए हमारे यहां संस्कार की परंपरा है। इसलिए देखिए जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे यहां संस्कार बताया, और वो संस्कार मन कल्पित नहीं है, वो वैदिक संस्कार है। गर्भाधान से लेकर निशेकांत तक संस्कार है। और जिसका जीवन जो है संस्कृत है वही जो है अमर हो सकता है। इसलिए पापादि से निवृत्त करने के लिए मनुष्य को वेद में कहा गया कि वो फल को लेकर के कर्म करे। तो पहले सकाम कर्म में रुचि बढ़ाने के लिए सकाम कर्म बताया गया, फल को देख करके मनुष्य कम से कम कर्म करे। तो पापादी से डायरेक्ट आप उनको निवृत्त नहीं कर सकते। पापादी का आचरण वो मनुष्य इसलिए करता है कि मेरे को फल चाहिए, लाभ चाहिए, सांसारिक लाभ चाहिए, इसलिए तो व्यक्ति पापाचरण करता है ना। आजकल हम देखते हैं कि कोई भी खाद्य पदार्थ आपको शुद्ध नहीं मिलेगा, अपने सही स्वरूप में नहीं मिलेगा जो उनका वास्तविक स्वरूप है। हर चीज में क्या है? मिलावट है। क्यों व्यक्ति ऐसा करता है? क्या चाहिए उनको? और वो परलोक के लिए कर रहा है क्या? वो जो मिलावट कर रहा है वो तो किस लिए कर रहा है? वो इहलोक के लाभ के लिए ही तो कर रहा है ना। तो इहलोक के लाभ के लिए यदि वो व्यक्ति पापाचरण करता है, निषिद्ध आचरण करता है, तो निषिद्ध आचरण करने के फलस्वरूप उनको लाभ तो इहलोक का मिलेगा और किया गया जो पाप है उनका जो फल भोग है उनको परलोक में भोगना पड़ेगा। तो लाभ कम और नुकसान ज्यादा है। यदि इस बात को बता दिया जाए तो व्यक्ति पापाचरण से निवृत्त होकर के उनको ये कहा जाए कि तुमको यह लोक का ही लाभ चाहिए ने, तो वैदिक अनुष्ठान करो। वेद में कहा गया है तुमको पशु चाहिए तो पशु के लिए अनुष्ठान है, पुत्र चाहिए तो पुत्र के लिए अनुष्ठान है, संसार के कोई भी लाभ चाहिए तो उनके लिए हमारे यहां जो है विधि है उससे भी इस लोक का जो लाभ प्राप्त किया जा सकता है। यदि इसमें व्यक्ति लगे फिर धीरे धीरे उनको ये बताया जाना चाहिए कि ये लोक का जो लाभ है वो भी नाशवंत है, तभी वो व्यक्ति जो है निष्काम कर्म में लगेगा। और निष्काम कर्म में लगेगा तो फिर धीरे धीरे वो आगे बढ़ता हुआ वो मोक्ष तक आगे बढ़ जाएगा। तो वो कर्म कैसे करना है उसके लिए वेद में विधि बताई गई, तो उस विधि के अनुरूप करेगा तो व्यक्ति निष्काम कर्म के फलस्वरूप अंतकरण शुद्धि करके वो ज्ञान का अधिकारी होकर के ज्ञान प्राप्त करके निर्विशेष ब्रह्म भाव को प्राप्त कर लेगा। इसलिए ये वेद है वो मनुष्य को अमर बना देता है, इसलिए वेद को अमृत कहा गया। और ऐसा जो अमृत वेद है उस वेद से ये ओमकार की उत्पत्ति हुई है। अधि संभव, अधि यानी के अधिक, विशेष रूप से संभव यानी कि अभवत, उत्पन्न हुए। तो ऐसे जो वेद अमृत वेद से जो उत्पन्न हुए हैं और जो छंदों में ऋषभ है, जो विश्वरूप है, ऐसा जो ओंकार है वो मेरे को मेधा से संपन्न करे। तो ओंकार के यहां पर तीन विशेषण हो गए। एक तो उनकी उत्पत्ति वेद से बताई और इसलिए वेद में वो श्रेष्ठ है और विश्व रूप है। तो जब ओंकार से प्रार्थना करे तो ओंकार का ये जो स्वरूप है उनका भी स्मरण रहना चाहिए कि ये जो ओंकार है कोई मनुष्य बुद्धि परिकल्पित नहीं है, किंतु उनकी उत्पत्ति वेद से है और वेद में वो श्रेष्ठ है। जैसे कठश्रुति में, जैसे कल भी आपको बताया था, एतद् आलंबनम श्रेष्ठम, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमारे यहां जो आलंबन है, जो उपासना है, उन सभी उपासना में भी ओंकार की उपासना श्रेष्ठ है। उससे त्वरित जो है परमात्मा की प्राप्ति, ब्रह्म भाव की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए श्रेष्ठ है, इस बात को भी ध्यान में रखना है, और विश्व रूप कैसे है उसको भी ध्यान में रखना है। ऐसा विश्व रूप जो ओंकार है वो मेरे को मेधा से स्पृणो, तो इस प्रकार का ये जप करना चाहिए। इसको ये प्रणव मंत्र हुए, ये जो वाक्य है उस वाक्य का जप करना ही प्रणव जप मंत्र है। इससे लाभ क्या होगा? मेधा की सिद्धि होगी, प्रज्ञा बल की प्राप्ति होगी। इसलिए ये स्वाध्याय अध्ययन से पहले इनका पाठ किया जाता है, इसलिए रोज इनका पाठ करना चाहिए, जिससे कि हमको प्रज्ञा बल की प्राप्ति होवे और इसके फलस्वरूप हम ये वेदांत का श्रवण कर सके और वेदांत के श्रवण में हमारी रुचि बढ़ेगी। भाव से अर्थपूर्वक यदि इनका पाठ किया जाए तो अवश्य जो है वेदांत में हमारा प्रवेश हो ही जाता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।